आज है 18 नवंबर दिन सोमवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। दिल्ली में जेएनयू छात्रों के संसद मार्च को पुलिस ने रोका।
कोई नहीं रोक पाएगा, जितना खींचना है खींचो, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे।
उत्तराखंड में निजी आयुर्वेद कॉलेजों के छात्र भी धरने पर।
सरकार और कॉलेज के गठजोड़ की वजह से इस प्रदेश का छात्र आज रोड पर उतर आया है और आगे का कोई भविष्य सूझ नहीं रहा है हमें।
संसद सत्र के पहले दिन फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी पर लोकसभा में हंगामा।
अभी भी फारूक अब्दुल्ला साहब हिरासत में है, ये क्या जुल्म हो रहा है, ये क्या अन्याय हो रहा है सर। दूसरे बार
हांगकांग में जंग का मैदान बना यूनिवर्सिटी कैंपस।
Situation is chaotic as all the supplies has been cut by the police put all the armed force nearby the campus.
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हॉस्टल फीस बढ़ाए जाने के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। शीत सत्र के पहले दिन छात्रों ने संसद तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें मेन गेट के पास ही रोक दिया। छात्रों के मार्च को देखते हुए उद्योग भवन, पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। इसी बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस मामले को लेकर एक 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। ब्रिटेन में चीन के राजदूत लियो शियो मिंग ने कहा है कि हांगकांग में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का लोकतंत्र और आज़ादी से कोई संबंध नहीं है। एक्टिविस्ट वहां अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। लियो शियो मिंग ने लंदन में एक प्रेस वार्ता में ये भी कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन नहीं रुके तो चीन हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। वहीं हांगकांग में पुलिस ने पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी की घेराबंदी की और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को पकड़ा। प्रदर्शनकारी इस यूनिवर्सिटी में छुपे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 70 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हिरासत में मौजूद हैं। ये बच्चे संस्थानों, आव्रजन केंद्रों, पुलिस कस्टडी और जेल में हिरासत में लिए गए हैं। स्वतंत्रता से वंचित बच्चों पर आधारित ये वैश्विक अध्ययन कहता है कि बच्चों को हिरासत में लेना भी एक तरह की हिंसा है। इसके अनुसार आव्रजन केंद्रों और युद्धग्रस्त इलाकों में हिरासत में लिए जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले एक स्वतंत्र विशेषज्ञ मैनफ्रेड नोवाक ने जिनेवा में बताया कि अमेरिका में ऐसे बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है।
The United States is one of the countries with the highest numbers. We have still more than 100,000.
अमेरिका में हिरासत में लिए गए बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ प्रवास के मामलों से जुड़ी हिरासत में 1,000 से ज्यादा बच्चे हैं, जो अन्य देशों के मुकाबले कहीं अधिक है। ये थे संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में शामिल स्वतंत्र विशेषज्ञ के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस ने एक साल पहले पकड़े गए यूक्रेन के 3 जहाजों को छोड़ दिया है। यूक्रेन की नौसेना ने जहाज वापस किए जाने की पुष्टि की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ओलेना ज़ेरकाल ने कहा कि जहाज ओडेसा शहर की तरफ जा रहे हैं। सितंबर में कैदियों की अदला बदली के तौर पर यूक्रेन के 24 नाविकों को भी रिहा किया गया था। इन सभी कदमों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की पेरिस में अगले महीने मुलाकात तय हुई है। फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर दोनों देश पूर्वी यूक्रेन में विद्रोह के मसले पर बातचीत फिर से शुरू करेंगे। उत्तर कोरिया का कहना है कि उसकी अमरीका के साथ एक और असफल बैठक करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उत्तर कोरिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वो देश के लिए कुछ न मिलने पर अमरीकी राष्ट्रपति को सिर्फ अपनी तारीफ करने का मौका नहीं देंगे। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्वीट किया था कि उत्तर कोरियाई नेता को अमरीका के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत करने के लिए जल्द ही कुछ करना चाहिए। वहीं अमरीकी रक्षा मंत्री ने भी घोषणा की थी कि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को प्रोत्साहन देने के लिए अमरीका और दक्षिण कोरियाई सैन्य अभ्यास को स्थगित कर दिया जाएगा। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर 3 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में 12 लोगों की मौत हो गई है। ईरान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, प्रमुख सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया और बैंक व सार्वजनिक इमारतों पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमले किए। विरोध प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए ईरान में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बेलारूस में चुनाव पर निगरानी रखने वालों ने कहा है कि संसदीय चुनाव में लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं के लिए सम्मान की कमी थी। इन चुनावों में 110 विधानसभा सीटों के लिए विपक्ष का कोई भी सदस्य नहीं चुना गया। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी, संदीप सोनी के साथ। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हॉस्टल फीस बढ़ाए जाने के विरोध में छात्रों ने आज संसद तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें संसद तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। घटनास्थल पर मौजूद थे बीबीसी संवाददाता विनीत खरे, सुनिए उनकी आंखों देखी।
हम इस वक्त जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सामने हैं। दिन के करीब 2:30 बजे हुए हैं। थोड़ी देर पहले जो हजारों छात्र यहां पर जमा थे वो प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि जो प्रशासन की तरफ से जो रोल बैक हुआ है उससे उनकी नाराज़गी थी, और ख़ासकर जिस तरह से उनका कहना है व्यवहार दिल्ली पुलिस के जो जवान यहाँ पर तैनात थे या फिर सुरक्षा बल के जो जवान तैनात थे उनका रहा है, उस पर उनकी खासी नाराजगी थी।
कोई नहीं रोक पाएगा, जितना खींचना है खींचो, हम लड़े थे, हम लड़ेंगे।
तो ये थे जो छात्र जिनकी बातें सुन रहे थे हम पर बहुत सारे दिल्ली पुलिस के जवान मुझे दिख रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आए थे, उन्होंने बैरिकेड्स को हटाने की बात कही है, और जो छात्र थे वो यहाँ से निकल कर आगे बढ़ गए हैं। हम उनकी तरफ ही जा रहे हैं और कहा गया हमें कि जो दिल्ली का जो आउटर रिंग रोड है उसकी तरफ वो छात्र गए हैं। यहाँ पर कुछ छात्र पीछे रह गए हैं और लेकिन जो बाकी के छात्र हैं, यहाँ पे जो स्थानीय छात्र बता रहे हैं, बाकी के छात्र करीब 90% छात्र वो एक दूसरे रास्ते से होते हुए संसद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
ये थे बीबीसी संवाददाता विनीत खरे जो बता रहे थे जेएनयू के छात्रों ने संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। छात्रों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया जिसे पुलिस ने खारिज कर दिया है। उधर दिल्ली से दूर उत्तराखंड में निजी आयुर्वेद कॉलेजों के छात्र भी पिछले 48 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इन कॉलेजों में सालाना फीस 80,000 से बढ़ाकर 2,15,000 रुपये कर दी गई है। छात्रों का आरोप है कि फीस गलत तरीके से बढ़ाई गई है और हाईकोर्ट के आदेशों की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। ज्यादा जानकारी रोहित जोशी की रिपोर्ट में।
आयुष प्रदेश बनने का सपना देख रहे उत्तराखंड में आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे सैकड़ों छात्र बेतहाशा फीस वृद्धि के खिलाफ पिछले 48 दिनों से धरने पर हैं। वापस लो। छात्र सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद भी इन निजी कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी इसलिए वापस नहीं ली जा रही क्योंकि ये कॉलेज सरकार के मंत्रियों, उनके रिश्तेदारों या दूसरे प्रभावशाली लोगों के हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे धरने पर बैठे एक छात्र अजय ने बीबीसी से कहा,
सरकार और कॉलेज के गठजोड़ की वजह से इस प्रदेश का छात्र आज रोड पर उतर आया है और आगे का कोई भविष्य सूझ नहीं रहा है हमें। जो मंत्री हैं इसकी वजह से हमारा भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है।
उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से संबद्ध इन निजी कॉलेजों के छात्रों का कहना है कि निर्धारित प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए गलत तरीके से फीस वृद्धि की गई है। सरकार ने एक आदेश जारी कर इन कॉलेजों में फीस बढ़ाकर 80,000 से सीधे 2,15,000 रुपये कर दी थी। इस मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचे एक छात्र ललित तिवारी ने बीबीसी को बताया,
सरकार एक असंवैधानिक तरीके से शासनादेश जारी करती है। अब देखिए मैं असंवैधानिक क्यों कह रहा हूँ। पहला, इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन शुल्क नियामक एक्ट जो 2006 उसका उल्लंघन है। बिना समिति के रिकमेंडेशन के शुल्क बढ़ाया गया। और दूसरा, जिस वक्त ये शासनादेश जारी हुआ मैं खुद थर्ड ईयर का छात्र था तो मुझसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी बकाया मांगा जाने लगा। तो इस चीज़ को लेकर मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। माननीय न्यायालय की एकलपीठ ने 9 जुलाई 2018 को आदेश देते हुए इस शासनादेश को निरस्त किया, साथ में 14 दिन के भीतर छात्रों को बढ़ा हुआ शुल्क लौटाने के आदेश दिए। मामला खंडपीठ तक पहुंचा और खंडपीठ ने भी एकलपीठ के फैसले पर मोहर लगाई। अब देखिए सरकार द्वारा हालांकि आदेश जारी किए जा रहे हैं पर वह अपनी टोपी दूसरे के सर वाले आदेश जारी किए जा रहे हैं।
छात्रों का कहना है कि निजी कॉलेजों में छात्रों को फीस नहीं जमा करने पर एकेडमिक गतिविधियों में शामिल होने से रोका जा रहा है और अटेंडेंस नहीं दी जा रही।
हम लोग जब कॉलेज आते हैं तो हमको बैग के फॉर्म नहीं भरने देते और कहते हैं कि बढ़ी हुई फीस दीजिए, और हमें मेंटली टॉर्चर किया जाता है, जबरदस्ती हमसे फीस की डिमांड की जाती है।
उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कुलपति सुनील जोशी निजी कॉलेजों पर सख्ती नहीं कर पाने की अपनी मजबूरी बताते हुए कहते हैं,
देखिए हमारे स्तर पे तो जो हो सकता है हम लोग काउंसिल को भी लिख के दे रहे हैं और इनको भी लिख के दे रहे हैं, जो वो हो सकता है जैसे डीएसलेट करने वाली बात, तो उससे 6000 बच्चे लगभग प्रभावित होंगे हमारे 18-20 कॉलेज के ना, तो कोई ऐसा रास्ता निकले कि जिससे कि हमारे बच्चों का अहित न हो और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाए।
दूसरी तरफ निजी कॉलेजों की दलील है कि 2004 के बाद से सरकार ने कोई फीस वृद्धि नहीं की। निजी कॉलेजों के एसोसिएशन के सदस्य और हिमालय आयुर्वेदिक कॉलेज के सचिव बालकृष्ण चमोली ने बीबीसी से कहा,
देखिए 2004 में हुआ था, 3 साल बाद बढ़ना था, 2007 में बढ़ना था, 2010 में बढ़ना था, 2013 में बढ़ना था, 2016 में बढ़ना था, 4 बार जब टर्म आना था बढ़ने का, अगर 15-20% भी जो बढ़ता है शुल्क तो आज तक तो 3.5-4 लाख रुपए होता। हमने तो सरकार को ऑलरेडी लिख के दे दिया, हमने मिनिस्टर को लिख के दे दिया एसोसिएशन ने कि अगर आप ये फीस रखते हैं तो हमारे पॉसिबल नहीं है, आप इन 4,500-5,000 जो छात्र हैं इनको आप सरकार अपने हिसाब से पढ़ा ले।
हालांकि इस विवाद का तुरंत हल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन छात्रों ने अपने आंदोलन को और उग्र बनाने की बात कही है। रोहित जोशी, BBC, देहरादून।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
अब से कुछ समय पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सरकार गठन की अटकलें तेज हो गई हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए मैंने BBC मराठी सेवा के सहयोगी ओंकार करंबेलकर से बात की।
महाराष्ट्र में जो कवायद शुरू है उसके पार्श्वभूमि पे शरद पवार जी और सोनिया गांधी जी का जो बैठक हुआ था तो उससे कुछ निकलेगा ऐसा सबको लग रहा था। वो मीटिंग्स तकरीबन 1 घंटे तक चली और उसके बाद उन्होंने बाहर आकर जो पत्रकार परिषद ली तो उसमें हमने देखा कि अब NCP ने अपना थोड़ा स्टैंड बदल दिया है। अब शरद पवार जी कह रहे हैं कि हमने कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं किया, मैंने सिर्फ महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, ये सिर्फ मैडम को ब्रीफ कर दी। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है महाराष्ट्र के, वो पहले आकर मैडम से मिले हैं और सोनिया गांधी जी को, और एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेता सिर्फ ब्रीफ करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और वो मीटिंग में कह रहे कि हमने सिर्फ ब्रीफ किया और हमने कुछ बातें नहीं की। तो ये थोड़ा बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति आज पैदा हो गई। उसके बाद उन्होंने एक बात की वो शिवसेना के बारे में, उनको जो भी प्रश्न शिवसेना के बारे में पूछा उन्होंने कहा कि वो उनको पूछिए, हमसे मतलब नहीं है, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और हमने मिलकर चुनाव लड़ा था, शिवसेना का प्रश्न मुझे मत पूछिए। और अब शिवसेना NDA से बाहर हो गई है, आज ही हो गई है, उसी दिन उसी शाम को ऐसा पल्ला झाड़ना, ये अब कौन सा संकेत दे रहा है और आगे जाकर महाराष्ट्र की राजनीति क्या हो रही है, उन्होंने और ज्यादा थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ाई है।
ओंकार, क्या ये मान के चलें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा और सरकार किस तरह से बनेगी, ये सस्पेंस अभी और बना रहेगा?
और बना रहेगा, क्योंकि भाजपा वाले अभी भी छाती पे हाथ रखकर कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, शिवसेना वाले कह रहे हैं कि सरकार कोई भी हो हमारा मुख्यमंत्री होगा, और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस NCP और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि हम दोनों ने अलग से चुनाव लड़ा था तो आप शिवसेना भाजपा को उनके लिए पूछो, हमारे लिए मत पूछो, उनका प्रश्न हमें मत पूछिए। तो अभी भी CM कौन होगा, भाजपा का होगा, शिवसेना का होगा या भाजपा का देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई CM होगा, ये अभी भी तय नहीं हो सकता, क्योंकि भाजपा वाले ये कह रहे कि हमारे तो 105 है, हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती।
महाराष्ट्र की राजनीति पर ये थे BBC मराठी सेवा के हमारे सहयोगी ओंकार करंबेलकर। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी का मुद्दा उठा, वहीं राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा के महत्व को रेखांकित किया। राज्यसभा का ये 250वां सत्र है। ज्यादा जानकारी के साथ BBC संवाददाता कमलेश मठेनी।
संसद का शीतकालीन सत्र आज से आरंभ हो गया है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है।
हम सभी मुद्दों पर खुलकर के चर्चा चाहते हैं, उत्तम से उत्तम बहस हो या आवश्यक है, वाद हो, विवाद हो, संवाद हो, हर एक कोई अपनी बुद्धि शक्ति का प्रचुर मात्रा में उपयोग करें और सदन की चर्चा को समृद्ध बनाने में योगदान दें और उससे जो अमृत निकलता है वो देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम आता है।
लोकसभा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी का मुद्दा उठा और उन्हें फौरन रिहा करने की मांग की गई। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी,
सर हमारा गृह मंत्री इस सदन में हमें आश्वासन दिया था कि फारूक अब्दुल्ला साहब को हिरासत में नहीं लिया गया, उसका सेहत थोड़ा खराब है, उनका सेहत खराब है लेकिन उसको हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन आज 108 दिन बीत रहे हैं, अभी भी फारूक अब्दुल्ला साहब हिरासत में है। ये क्या जुल्म हो रहा है, ये क्या अन्याय हो रहा है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के बढ़ते हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दूसरी ओर राज्यसभा में आज का दिन इस लिहाज से खास रहा कि सोमवार से राज्यसभा के 250वें सत्र की शुरुआत हुई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए राज्यसभा के महत्व को रेखांकित किया।
हर किसी के लिए चुनावी अखाड़ा पार करना बहुत सरल नहीं होता है, लेकिन देश हित में उनकी उपयोगिता कम नहीं होती है, उनका अनुभव उनका सामर्थ्य उतना ही मूल्यवान होता है। तो ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ इस प्रकार के सामर्थ्यवान महानुभाव, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोग, उनका लाभ देश के राजनीतिक जीवन को, देश के नीति निर्धारण के अंदर उनका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और मैं मानता हूं इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाबा साहब आम्बेडकर स्वयं है, क्योंकि किसी न किसी कारण से उनको लोकसभा में पहुंचने नहीं दिया गया, लेकिन यही तो राज्यसभा थी जहां बाबा साहब आम्बेडकर के कारण देश को बहुत लाभ मिला, और इसलिए हम इस बात का गर्व करते हैं।
संसद का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाएगा। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की विशेष संयुक्त बैठक भी होगी। कमलेश मठेनी, BBC, दिल्ली।
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कल तक पुनर्विचार याचिका का विरोध कर रहे इकबाल अंसारी अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस मामले पर पूरे मुस्लिम समुदाय की राय एक नहीं है और कम से कम एक वर्ग तो ऐसा है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले को सही नहीं मान रहा। BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
इकबाल अंसारी के सुर कल और आज के बीच बदले बदले से लगे, इस सवाल पर कि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इरादे पर वो क्या कहेंगे। इकबाल अंसारी ने BBC से कहा,
देखिए हम तो भी कमेटी के तो लोग हैं, एक मस्जिद हमारी तो है नहीं, हम भी कमेटी के हैं। अगर कमेटी कोई फैसला करती है तो कमेटी के में 5 लोग अगर रहेंगे तो जो है वो स्टैंड कोई कम नहीं होगा।
कल लखनऊ में हुई बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले हफ्ते आए फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। देश की सबसे ऊंची अदालत ने हालांकि ये माना कि मस्जिद को तोड़ा जाना आपराधिक था, उसने ये भी कहा कि भक्ति के आधार पर जमीन का मालिकाना हक तय नहीं हो सकता, लेकिन कोर्ट ने कई दूसरे सबूतों का हवाला देते हुए विवादित भूमि को हिंदुओं को देने का हुक्म सुनाया और मुसलमानों को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दूसरी जगह देने की बात भी कही। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले के खिलाफ 30 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही है। हालांकि समुदाय में बोर्ड के फैसले को लेकर राय बटी हुई है। मुस्लिम स्कॉलर सैयद उबैदुर रहमान कहते हैं,
इस मामले भी जो गलती उन्होंने ट्रिपल तलाक के मामले में की वो अयोध्या के मामले में, बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि के मामले में भी कर रहे हैं, और इस मामले को प्रोलॉन्ग करके वो मुसलमानों को फायदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी रोटी सेकने की जो उनकी कोशिश है बहुत दिनों से है उसको जारी रखने का है। कि एक लॉजिकल कदम है इनके लिए कि अगर उन्होंने बाबरी मस्जिद का मामला खत्म कर दिया तो इसका मतलब है कि जो वो है क्या नाम है लीडरशिप जो है वो उनकी खत्म हो जाएगी।
उबैदुर रहमान का कहना है कि मुसलमानों को पहले ही जाने माने मुस्लिम विद्वान वहीदुद्दीन खां की बात मान लेनी चाहिए थी, जिसमें उन्होंने अयोध्या, मथुरा और काशी की विवादित मस्जिदों को हिंदुओं के हवाले करने की बात कही थी, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ती कटुता बहुत हद तक कम हो जाती। मुसलमानों के एक पक्ष का मानना है कि तब तक तो कम से कम मुस्लिम वोट बैंक का भ्रम कायम था, BJP के मजबूत होने के बाद मुसलमानों के हाथ से वो भी जाता रहा। समाज के कई दूसरे लोग भी ऐसी बातें करते सुने जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी डाले जा रहे पोस्ट में अलग अलग राय हैं, मगर पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और बाबरी मस्जिद का केस लड़ रहे वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष संविधान के अंदर मुहैया करवाए गए सभी कदम उठाएगा।
देखिए दो बातें, जिन लोगों की राय आप बता रहे हैं 1986 से वो यही राय देते रहे हैं, लिहाजा हमें उनकी राय की कोई फिक्र नहीं, और उनकी तादाद मुस्लिम कम्युनिटी में 1% भी नहीं है। 99% मुसलमान जो चाहता है हम वो कर रहे हैं, मुसलमानों के जज्बात की तर्जमानी हम कर रहे हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी नुमाइंदा जमात है। दूसरी बात जो आपने कही, कुछ हासिल नहीं होगा। जब मुसलमान अपनी मस्जिद पर लड़ाई नहीं लड़ सकता है तो अपने दीगर हकूक पर लड़ाई क्या लड़ेगा, ये मैसेज हम नहीं देना चाहते। मुसलमान इस मुल्क में बराबर का शहरी है, अपने हर हक के लिए लड़ेगा। शरीयत के तहफ्फुज के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया था, मस्जिद पर्सनल लॉ में शामिल एक चीज है।
अयोध्या से बाबरी मस्जिद के पक्षकार खालिक अहमद खान ने कहा कि मुसलमानों की तरफ से चंद लोगों के केस से अलग होने यानी याचिका दाखिल न करने के फैसले का किसी तरह का कोई कानूनी असर नहीं होगा।
जो अपील का केस है उस पर कोई भी डिफेंस नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक आदमी भी चला जाए, बल्कि जो पार्टी थी वो भी ना जाए, कोई एक मुसलमान 20 करोड़ में चला जाएगा तो वो स्टैंड करेगा अपील।
पिछले हफ्ते एम सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास केस में आए फैसले में मुसलमानों की तरफ से 8 पैरोकार थे, जिसमें से 6 मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हैं। हालांकि अदालत मुस्लिम पक्ष को याचिका दाखिल करने की इजाजत देगा या नहीं ये तो उस पर ही निर्भर होगा, लेकिन अगर अपील दाखिल हो जाती है तो राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया थोड़े वक्त के लिए और टल जाएगी। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
सरकार विरोधी प्रदर्शनों की वजह से हांगकांग दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। यहां ना पुलिस पीछे हटने को तैयार है न प्रदर्शनकारी। ज्यादा जानकारी के साथ मानसी दास।
हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी प्रदर्शनकारी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं तो कभी पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रही है। इस बार दोनों के बीच संघर्ष का केंद्र बनी है पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, जहां से प्रदर्शनकारियों ने भागने की कोशिश तो की लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उन पर आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां दागी। घटनास्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को सुनिए।
The situation is chaotic as all the supplies has been cut by the police put all the armed force nearby the campus.
हालात भगदड़ वाले हैं। पुलिस ने कैंपस से निकलने के सभी रास्तों को बंद कर दिया है। प्रदर्शनकारी जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पुलिस उन्हें धर दबोचती है।
Inside the campus there is a lot of students from the Poly University or even the different university.
कैंपस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी एम्बुलेंस को भीतर नहीं आने दे रही। पुलिस हमें गोली मारने की धमकी दे रही है। प्रदर्शनकारियों के पास पुलिस से निपटने के लिए पेट्रोल बम के सिवा कुछ नहीं है।
इस बीच प्रदर्शनकारियों को आज कोर्ट के एक फैसले से थोड़ी राहत मिली है। पिछले महीने सरकार ने मास्क लगाने पर पाबंदी लगा दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में मास्क पर सरकार की पाबंदी को असंवैधानिक बताया है। हांगकांग में लगभग 6 महीने से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनों के दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में आम तौर पर शांति रही है। लेकिन पिछले हफ्ते चाइनीज यूनिवर्सिटी और अब पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में हुए संघर्ष ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों को नया आयाम दे दिया है। हांगकांग साल 1997 तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, लेकिन अब वो चीन का हिस्सा है। ब्रिटेन से चीन को हांगकांग इस शर्त पर मिला था कि वहां एक देश दो शासन वाली प्रणाली रहेगी। इस मॉडल के तहत हांगकांग को चीन के मुकाबले बहुत अधिक स्वायत्ता मिली है, लेकिन इस स्वायत्ता पर खतरा मंडराता देखकर हांगकांग के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। चीन का मानना है कि हांगकांग के लोगों को विदेशी ताकतें भड़का रही हैं। हांगकांग में लोकतंत्र के मौजूदा मॉडल को हाइब्रिड डेमोक्रेसी का मॉडल कहा जाता है, जहां चुनाव में आमतौर पर वही लोग खड़े होते हैं जिनके नाम बीजिंग में तय होते हैं। हांगकांग के लोग अब इस पूरी पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी हांगकांग को अब अपनी नाक का सवाल बना लिया है।
रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास, और अब बारी है श्रोताओं की, आपकी चिट्ठियों की।
आपकी राय, आप
आपकी राय के साथ आज मैं हूं पंकज प्रियदर्शी और मेरा साथ दे रही हैं
मैं हूं ज्योतिका। सबसे पहले मैं ईमेल पढ़ना चाहूंगी गीता सुमन का। ये एमपी से लिखती हैं कि अभी अभी दिन भर प्रोग्राम सुना, सभी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी लगी, लेकिन भगवान के लिए प्लीज 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 एके गांगुली के इंटरव्यू को सुनकर हम लोगों के फीलिंग्स के साथ मत खेलो। बीबीसी हिंदी से मेरे दिल से प्रार्थना है।
पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको हमारे कार्यक्रम रिपोर्ट्स अच्छी लगती हैं। जहां तक जस्टिस गांगुली के इंटरव्यू की बात है तो गीता जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जस्टिस गांगुली का एक पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले को सभी ने माना, लेकिन अगर कानूनी दायरे में कोई बात कहता है तो उसको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, ये लोकतंत्र है। अगर इसका दूसरा पक्ष भी आएगा, और कई लोगों ने राम मंदिर के समर्थन में जब भी बातें कही हैं ज्योति का, हमने उसको जगह दी है, तो जस्टिस गांगुली खुद भी ऐसी फैटर्निटी से आते हैं, लॉ फैटर्निटी से, जहां पर वो खुद ही जज रह चुके हैं। बीबीसी किसी का पक्ष नहीं लेता।
अगला ईमेल लिखा है चुन्नू कुमार ने, लिखते हैं कि बीबीसी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर कल्चर का छात्र हूं। मैं पिछले 4 सालों से बीबीसी का नियमित श्रोता हूं और बीबीसी के निष्पक्ष तथा विश्वसनीय खबरों से बहुत प्रभावित हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके पहले जो पत्र हमने शामिल किए थे तो मुझे लगता है उनको भी जवाब मिल गया होगा। लेकिन देखिए, मैं उस हम एक संस्थान के तौर पे उस बहस में नहीं जाना चाहते कि कौन किस तरह की खबरें करता है। हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपको निष्पक्ष खबरें मिले, तो ये हमारी कोशिश जारी रहेगी।
अगला ईमेल मैं पढ़ना चाहूंगी प्रमोद सबरवाल का। ये त्रिकुटा नगर जम्मू से लिखते हैं कि 14 नवंबर को नमस्कार भारत में पेश दुनिया जहान वाकई में एक बहुत अच्छी पेशकश थी। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि बीबीसी हिंदी पहली बार किस सन और किस माह में हुआ था? सुबह की सभा को अगर नमस्कार भारत की जगह यदि सुबह के साथ कहेंगे तो कैसा रहेगा?
प्रमोद जी, बीबीसी हिंदी तो उस समय नहीं थी, लेकिन बीबीसी की हिंदुस्तानी सेवा का पहला प्रसारण 11 मई 1940 को हुआ था ज्योतिका, और वही जो बाद में फिर हिंदी सेवा बनी थी, लेकिन उस समय से हिंदुस्तानी सेवा कहा जाता। देखिए, सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग ज्योतिका बहुत विचार विमर्श के बाद एक कार्यक्रम का नाम तय करते हैं और ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो सुझाव इनका अच्छा है, लेकिन नमस्कार भारत से भी कोई बुराई नहीं है, हम आपको सुबह सुबह नमस्कार करते हैं।
अगला ईमेल मैं पढ़ना चाहूंगी पीके बैनर्जी का। भोपाल से लिखते हैं, दिनांक 14 नवंबर 2019 के दिन भर कार्यक्रम में बिहार के महान गणितज्ञ विशिष्ट नारायण सिंह जी के निधन के बारे में पता चला। वास्तव में हमारे भारतीय चैनलों से कई ऐसे समाचार छूट जाते हैं जिससे उनको टीआरपी नहीं मिलती। बीबीसी ना बताता तो शायद मुझे वशिष्ठ नारायण सिंह जी के बारे में नहीं पता चलता।
जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद खबर थी, और वशिष्ठ नारायण सिंह जाने माने गणितज्ञ थे और उनकी काफ़ी चर्चा हुई थी, लेकिन पिछले कई महीनों से कह लें वो बीमार चल रहे थे, पटना के अस्पताल में भर्ती थे और उनकी मृत्यु हुई। तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि गणित की दुनिया में उन्होंने कई ऐसे प्रयोग किए जो पहले किसी ने नहीं किए थे, लेकिन आपकी बात ये सही हो सकती है, सबका अपना नज़रिया होता है कि उनके बारे में उस तरह की बातें खुल के नहीं आ पाती हैं जिस तरह आनी चाहिए थी, लेकिन अब उनका निधन हो गया है और राज्य सरकार ने भी काफ़ी उनको राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हुई। हालांकि ये सवाल जरूर उठे कि जब वो जीवित थे तो उनके बारे में सरकारों ने क्यों नहीं सोचा। तो ज्योतिका, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया, चलते चलते अपने श्रोताओं को पता बताते
जी।
बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110001। और अगर ईमेल से लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश पठानी से।
बीबीसी समाचार। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हॉस्टल फीस बढ़ाए जाने के विरोध में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन छात्रों ने संसद तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। ब्रिटेन में चीन के राजदूत लियो शियोमिंग ने कहा है कि हांगकांग में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का लोकतंत्र और आज़ादी से कोई संबंध नहीं है, एक्टिविस्ट वहां अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 70 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हिरासत में मौजूद हैं। ये बच्चे संस्थानों, आव्रजन केंद्रों, पुलिस कस्टडी और जेल में हिरासत में लिए गए हैं। रूस ने एक साल पहले पकड़े गए यूक्रेन के 3 जहाजों को छोड़ दिया है। यूक्रेन की नौसेना ने जहाज वापस किए जाने की पुष्टि की है। उत्तर कोरिया का कहना है कि उसकी अमेरिका के साथ एक और असफल बैठक करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
उत्तर कोरिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वो देश के लिए कुछ न मिलने पर अमरीकी राष्ट्रपति को सिर्फ अपनी तारीफ करने का मौका नहीं देंगे। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर 3 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में 12 लोगों की मौत हो गई है। विरोध प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए ईरान में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण नमस्कार भारत समय जानते हैं आप भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। शुभ रात्रि।